समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के संक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं अनीता आनंद। नमस्कार अनीता।
नमस्कार अलका। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेरिन वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, That is the 17th of February. So let's begin with the headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कपड़ा क्षेत्र में भारत का निर्यात वर्तमान में 3 लाख करोड़ रुपए है और 2030 तक इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल भारत टेक्स 2025 कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कपड़ा और परिधान निर्यात में पिछले वर्ष 7% की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि भारत आज छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता देश के विभिन्न भागों में बनने वाले वस्त्रों में झलकती है। श्री मोदी ने कहा कि हथकरघा कारीगरों का हुनर दुनिया तक पहुंचाना चाहिए और उनकी क्षमताएं और अवसर भी बढ़ने चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लगी प्रदर्शनी भी देखी और प्रदर्शकों से बातचीत की। भारत टेक्स 2025 एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है। इसका आयोजन 14 फरवरी से आज तक किया जा रहा है। भारत टेक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और व्यापक कार्यक्रम है।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यस्टरडे सेड सेवरल इफेक्टिव स्टेप्स हैव बीन टेकन ड्यूरिंग द लास्ट 10 इयर्स फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। इनॉग्रेटिंग द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव 2025 इन न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंट मुर्मू सेड द कंट्री विल बिकम डेवलप्ड Only if the tribal societies are uplifted.
पिछले 10 वर्षों के दौरान जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाया गया है। ट्राइबल डेवलपमेंट बजट 5 गुना बढ़कर लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसके अलावा ट्राइबल वेलफेयर बजट एलोकेशन 3 गुना बढ़कर लगभग 15,000 करोड़ रुपया हो गई है। 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने आदिवासी विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है।
The president said that the craft, food, dress and jewelry, medical practices and household equipment and sports of the tribal society are the precious heritage of the country. Our correspondent reports that Adi Mahotsav is being organized by the Ministry of Tribal Affairs and will continue till the 24th of this month.
Qatar ke Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani aaj se Bharat ki 2 din ki rajkiya yatra par aayenge. अपनी यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि कतर के अमीर की यात्रा बढ़ती बहुमुखी साझेदारी को और गति प्रदान करेगी। भारत और कतर के बीच मित्रता, विश्वास और आपसी सम्मान के गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल के वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर हेल्ड मीटिंग्स विद हिज काउंटरपार्ट्स फ्रॉम मॉरिशस, मालदीव्स, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका ऑन द साइडलाइंस ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इन ओमान्स कैपिटल मस्कट यस्टरडे। ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद द मॉरिशियन काउंटरपार्ट Dhananjay Ritesh Ramphal, Dr. Jayashankar emphasized upon the commitment to further strengthen special bonds of friendship between the two nations. It was Dr. Jayashankar's first meeting with Ramphal, the External Affairs Minister. During his meeting with the Maldivian counterpart, Abdullah Khalil discussed many facets of India-Maldives cooperation with his Sri Lankan counterpart, Vijita Herath. Dr. Jayashankar discussed wide-ranging cooperation between the two nations. He also expressed India's commitment to the economic recovery and progress of Sri Lanka. During his visit to Oman, Jayashankar also met his counterparts from Oman, Brunei and Iran on the sidelines of the Indian Ocean Conference. He also held a meeting with Bangladesh Foreign Minister Affairs Advisor Mohammad Tohid Hossain.
नई दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज सुबह 4.0 तीव्रता का भूकंप आया. राष्ट्रीय सिस्मोलॉजी केंद्र के अनुसार भूकंप सुबह 5:36 पर आया और इसका केंद्र दिल्ली के पास 5 किलोमीटर की गहराई पर बताया जा रहा है. राष्ट्रीय सिस्मोलॉजी केंद्र ने बताया कि दिल्ली, नोएडा, इंदिरापुरम और एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में आया भूकंप का केंद्र 28.59 उत्तरी अक्षांश और 77.16 पूर्वी देशांतर पर था. अभी तक संपत्ति या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है.
Prime Minister Narendra Modi urged everyone to stay calm and follow safety precautions after tremors were felt in Delhi and nearby this morning. In a social media post, Mr. Modi forewarned the citizens to stay alert for possible aftershocks and assured that the authorities are keeping a close watch on the situation.
भारतीय नौसेना के INS शार्दुल और लंबी दूरी के समुद्री निगरानी P8I विमान इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में भाग ले रहे हैं. इंडोनेशिया के बाली में कल से शुरू हुए इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम की समीक्षा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति करेंगे. विभिन्न देशों के नौसेना बलों के साथ भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा संगोष्ठी और सामरिक फ्लोर गेम सहित विभिन्न उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी.
Another flight of illegal Indian immigrants from the US landed at Amritsar's Shri Guru Ram Das Ji International Airport last night with 112 deportees. This is the third such flight and second within 24 hours which brought back deported Indians who entered the US through illegal means or duped by the travel agents on the pretext of sending them legally to the US. Their deportation is a part of an ongoing crackdown by US immigration authorities on individuals who entered the country illegally. With this, more than 300 Indians have been deported from the US. Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann has urged the youth of the state to learn lessons from the deportation of illegal immigrants from the US and shun the idea of going abroad by wrong means and work hard at their native state to make it a front runner in the country.
आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 2025 के संस्करण के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री योग पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू करने की घोषणा की है. ये पुरस्कार योग के प्रचार और विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण और निरंतर योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देते हैं. प्रत्येक विजेता को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रूपये की नकद पुरस्कार से नवाजा जाएगा. पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और योग के प्रचार में कम से कम 20 वर्षों का समर्पित अनुभव होना चाहिए. आवेदन और नामांकन MyGOV प्लेटफॉर्म के माध्यम से 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले जमा किए जा सकते हैं.
In the 2024-25 season of the AFIH Pro Hockey League, India's men's teams defeated Spain 2-0 at the Kalinga Stadium in Bhubaneswar today. Both goals came up in the third quarter through Mandeep and Dilpreet. The Indian men's hockey team will play Germany in their next AFIH Pro League match on Tuesday. The Indian women team will now take on Spain in their next AFIH Pro League match on Tuesday.
और अब खबरें महाकुंभ से. उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए और महाकुंभ मेले के दौरान अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जंक्शन तक 4 नई महाकुंभ मेला विशेष रेलगाड़ियां शुरू की. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 4 ट्रेनों में से एक आनंद विहार रेलवे स्टेशन से और बाकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि इन रेलगाड़ियों के प्रस्थान का समय प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच निर्धारित किया गया है. ट्रेन संख्या 04420 और 04422 और दूसरी ट्रेन 04418 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जंक्शन तक संचालित की जा रही है और ट्रेन संख्या 04424 आनंद विहार रेलवे स्टेशन से है. प्रयागराज महाकुंभ में 40,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले स्वच्छ सुजल गांव विभिन्न सरकारी पहलों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य में आए बदलाव को प्रदर्शित कर रहा है। यहां आने वाले पर्यटकों को इन गांवों में राज्य की सफलता की झलक देखने को मिल रही है। इनमें राज्य सरकार के ऐतिहासिक सुधारों से बदलते गांवों को दिखाया गया है। एक रिपोर्ट।
ये आदर्श गांव दर्शाता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा, झांसी, चित्रकूट, ललितपुर और महोबा में पानी की कमी के मुद्दों को किस तरह संबोधित किया गया है। स्वच्छ सुजल गांव को पेयजल का समाधान मेरे गांव की नई पहचान की थीम पर बनाया गया है और ये अतिथि देवो भव की सदियों पुरानी परंपरा को दर्शाता है। इसमें आगंतुकों को जल प्रसाद दिया जाता है। गांव में प्रत्येक दिन विभिन्न कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है और इसके साथ ही हर शाम गंगा जल आरती होती है। गांव में 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगु और मराठी में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जिससे अन्य राज्यों के लोग उत्तर प्रदेश में हो रहे परिवर्तन को जान सकें। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में अब समय है 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का। पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ हैं अनीता।
चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन लेड द फाउंडेशन फॉर द 547 करोड़ सेंट्रल टावर विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड एंड तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन थ्रू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। एज पर द प्रोजेक्ट डिटेल्स, द ग्राउंड एंड द फर्स्ट फ्लोर 4 फ्लोर्स will house small-scale retail and commercial retail businesses. 5th to 24th floors will have office space. The 25th will be the service-oriented entities, while the top two will be for bigger commercial establishments. Karnataka Revenue Minister Krishna Bairi Gowda has informed that over 2,22,83,000 land records were successfully linked with Aadhaar in the state as on January this year. In a statement issued to the media, the minister appreciated the efforts of village administrative officers and village assistants in linking the land records with Aadhaar of the farmers. He explained that linking Aadhaar with the land records is crucial as it prevents fraudulent registrations of land. The revenue minister has announced that the honorarium will be paid under the Bhu Suraksha scheme and an amount of over 4,45,67,000 is allocated through public financial management system. Telangana state government has taken up the exercise of recording information from households to enumerate their details in the socio-economic, educational, employment, political and caste survey till 28th of this month. The state witnessed a debate over caste survey with Bharat Rashtra Samiti BRS working president K.T. Rama Rao criticizing the exercise even as certain backward classes associations raised objections. The state planning department has announced 3 methods for submission of information. They can call 040-211-1111 between 9 a.m. and 5 p.m. from anywhere in the state to request enumeration. Additionally, households can visit the Mandal Parishad Development Offices, MPDO offices in rural areas and ward offices in urban areas to submit their details. The trained staff will be available at these centers to assist in filing the survey form. The survey form can also be downloaded from seeepcsurvey.cgg.gov.in. Once completed and signed, it can be submitted at the nearest Praja Palan Seva Kendra. And now for Metro News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Alka Singh.
Delhi ke Uprajyapal Karyalay ne Yamuna Safai का काम शुरू होने की जानकारी दी। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कार्यालय ने बताया कि कचरा उठाने वाले स्कीमर, खरपतवार निकालने वाले यंत्र और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट के माध्यम से यमुना की सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया है। कार्यालय ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव और ACS INFC से भेंट कर उन्हें तुरंत काम शुरू करने को कहा था। इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को शहर में औद्योगिक इकाइयों द्वारा नालों में अनुपचारित अपशिष्ट के निर्वहन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश भी दिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग घायल हैं। श्री उपाध्याय ने कहा कि घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि हादसे के शिकार पीड़ितों के लिए रेल मंत्रालय ने मुआवजे की घोषणा की है, जिसके अनुसार मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5-2.5 लाख और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। रेलवे के पुलिस आयुक्त KPS मल्होत्रा ने बताया कि वर्तमान समय में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं। श्री मल्होत्रा ने कहा कि रेलवे पुलिस बल और दिल्ली पुलिस ने एक संयुक्त व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि निकास बिंदुओं और फुट ओवर ब्रिज दोनों पर व्यवस्था की गई है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि विशेष ट्रेनों के लिए गतिशील व्यवस्था की गई है। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए और कुंभ मेले के दौरान अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए आज स्पेशल 5 ट्रेन चलाई जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा लोकनायक अस्पताल में घायलों से मिले और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से मन व्यथित है। श्री सचदेवा ने कहा कि सभी अधिकारी भगदड़ से प्रभावित हुए लोगों की सहायता कर रहे हैं। वहीं दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने इस हादसे को दुखद और हृदय विदारक बताया। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिजन से मुलाकात की। सुश्री आतिशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि कई लोग घायल हैं जिनका उपचार जारी है। बात करें मुंबई की तो केंद्रीय श्रम रोजगार युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने रविवार को दादर स्थित बसंत स्मृति भाजपा कार्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं का मार्गदर्शन किया। युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किया गया था। मंत्री ने कहा कि हमारी युवा शक्ति की क्षमता कुछ ही वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बना देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा देश के विकास के लिए प्रतिवर्ष देश के गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से 1 लाख युवाओं को आगे लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि राजनीति में भाई भतीजावाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,70,00,000 युवा MyGov प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। नवी मुंबई के नेरूल में DPS फ्लेमिंगो झील को बचाने के प्रयासों के अभियान को बढ़ावा देते हुए महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने 30 एकड़ की इस आर्द्र भूमि को संरक्षण रिजर्व घोषित करने के लिए सरकारी समिति की सिफारिश को आगे बढ़ाने का वादा किया है। बात कर लें कोलकाता की तो फोरम फॉर फिल्म स्टडीज एंड एलाइड आर्ट्स ने रविवार को कोलकाता में 13वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सत्यजीत रे थिएटर में 18 देशों की 19 फिल्में दिखाई जाएंगी। ये महोत्सव 20 फरवरी तक चलेगा। इस महोत्सव का उद्घाटन फिनलैंड दूतावास के सचिव ने किया। आज सवेरे आप सुन रहे हैं अलका सिंह और अनीता आनंद के साथ, और अब समय है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात कर लें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। दिल्ली की बात करें तो अनीता, मौसम से पहले तो आज दिल्ली में जोरदार भूकंप आया
जी,
और बिल्कुल हम सब डर गए और लगा कि पता नहीं क्या है। फिर एकदम से हुआ कि नहीं, भूकंप का ये जोरदार झटका है। तो दिल्ली की बात करें तो हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो वहां आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं जॉय सिटी कोलकाता में सुबह में कोहरा और धुंध छाए रहेगा और बाद में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बाकी का हाल आप बताएं।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग एंड मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 22 डिग्री सेल्सियस एंड द मिनिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। The maximum will be around 33 degrees. Bangalore is expected to have mist. The minimum temperature was 17 degrees Celsius and the maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 20 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius. And time now to turn the pages of history and remember events that happened today.
अब समय इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 17 फरवरी है तो आज ही के दिन 1670 में शिवाजी ने मुगलों के कब्जे वाले सिंहगढ़ किले को जीता और मुगलों से जमकर लोहा लिया।
जी, इन 1739 द बैटल ऑफ वसई बिगैन बिटवीन द मराठास एंड द पोर्चुगीज। इन 1864 ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर द H.L. Hunley became the first submarine to engage and sink a warship.
1813 की बात करें तो पर्शिया ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान किया। वहीं 1852 में फ्रांस में प्रेस सेंसर सहित अनेक दमनात्मक कदम उठाए गए और 1878 में सैन फ्रांसिस्को शहर में पहली बार टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया। वहीं 1882 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच खेला गया। 1915 में गांधी जी ने पहली बार शांति निकेतन का दौरा किया।
इन द ईयर 1904 इटालियन कंपोजर जियाकोमो पुचीनीज मैडम बटरफ्लाई प्रीमियर्ड एट ला स्काला इन मिलान बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली परफॉर्म्ड ऑपरास एवर। In 1936, the world's first superhero, the Phantom, made his debut in Lee Fox's cartoon strip comics.
थोड़ा सा पीछे 1927 में वीर वामन राव जोशी द्वारा लिखित रंद दुम्भी नाटक का मुंबई में प्रयोग हुआ जिसमें दीनानाथ मंगेशकर ने तेजस्विनी की भूमिका निभाई थी और 1931 में लॉर्ड इरविन ने गांधी जी का स्वागत वायसराय निवास में किया था। 1933 में अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका न्यूज वीक प्रकाशित हुई। वहीं 1934 में पर्वतारोहण के दौरान बेल्जियम नरेश एल्बर्ट प्रथम की मौत हुई। 1947 की बात करें तो सोवियत संघ में वॉयस ऑफ अमेरिका का प्रसारण शुरू हुआ। वहीं 1959 में वैनगार्ड 2 नामक पहला मौसम उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया गया और 1964 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने नागरिक अधिकारों पर बने कानून को स्वीकार किया। वहीं 1976 में मकाऊ ने संविधान को अंगीकार किया और 1983 में नीदरलैंड्स ने संविधान को अंगीकार किया। 1996 में रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव ने डीप ब्लू नामक एक सुपर कंप्यूटर को इस खेल में परास्त किया और 2000 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास संगठन ने बांग्लादेश के अनुरोध पर 21 फरवरी को संपूर्ण विश्व में मातृभाषा दिवस मनाने का निश्चय किया। अनीता, ये बहुत अच्छी बात है, 21 फरवरी भी आने वाला है और उस समय राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, क्योंकि हम हिंदी और अंग्रेजी तो बोलते हैं लेकिन हम ज्यादा कनेक्ट अपनी मातृभाषा से होते हैं, इसलिए वो मदर टंग है।
जी
बिल्कुल। और अब बात कर लें उन व्यक्तित्वों की जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा।
वी बिगिन दिस सेगमेंट बाय रिमेम्बरिंग जॉन बैप्टिस्ट फोकले और पॉपुलरली नोन एज मोलियर। ही पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 1673। द फ्रेंच प्ले राइट एक्टर पोएट वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट राइटर्स इन फ्रेंच लैंग्वेज एंड वर्ल्ड लिटरेचर। हिज एक्सटेंट वर्क्स include comedies, farces, tragic comedies, comedy ballets and more. His plays have been translated into every major living language and are performed at the Comédie Française more often than those of any other playwright today. His influence is such that French language is often referred to as the language of Molière. Molière procured a command performance before the king at Louvre. In the other locations that he performed, he found success among Parisians with plays such as The Affected Ladies, The School for Husbands, The School for Wives. His royal favor brought a royal pension to his troupe and the title The King's Troupe. Molière continued as the official author of court entertainments.
बिल्कुल। और अनीता, हमने पहले भी आज शिवाजी की बात की थी तो आज का जो दिन है वो बिल्कुल क्रांतिकारी दिन है। तो आज हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले भारत के प्रथम क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के की। वासुदेव का जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के श्री ढोने गांव में हुआ था। फड़के ने 1857 की प्रथम संगठित महाक्रांति की विफलता के बाद स्वतंत्रता के महासमर की पहली चिंगारी जलाई और वासुदेव बलवंत फड़के बड़े तेजस्वी और स्वस्थ शरीर के बालक थे। उन्हें वनों और पर्वतों में घूमने का बड़ा शौक था। कल्याण और पुणे में उनकी शिक्षा हुई। फड़गे के पिता चाहते थे कि वो व्यापारी की दुकान पर 10 रुपए मासिक वेतन की नौकरी कर लें और पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन फड़गे ने ये बात नहीं मानी और मुंबई आ गए। वहां पर उन्होंने GRP में 20 रुपए मासिक की नौकरी करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और देश के लिए अपनी सेवाएं देते हुए 1879 में फड़गे अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए और आजीवन कारावास की सजा देकर उन्हें अदन भेज दिया गया। यहां पर फड़गे की कड़ी शारीरिक यातनाएं उन्हें दी गई और इसी के फलस्वरूप 1883 में उनकी मृत्यु हो गई। और बात कर लें, आज पुण्यतिथि है रानी गांधेलियों की। भारत की प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारियों में से एक थीं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में नागालैंड में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। रानी गांधेलियों का जन्म 26 जनवरी 1915 को भारत के मणिपुर राज्य में पश्चिमी जिले में हुआ था। वो बचपन से ही बड़े स्वतंत्र और स्वाभिमानी स्वभाव की थी। जब रानी गांधेलियों को अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई वर्षों की सजा काट चुकी रानी को रिहाई दिलाने का प्रयास किया, किंतु अंग्रेजों ने उनकी इस बात को नहीं मानी और वे रानी से बहुत ही भयभीत थे और उन्हें अपने लिए खतरा मानते थे और 1993 में आज ही के दिन उनका निधन हो गया।
टुडे इज ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ थेलोनियस स्फीयर मंक, द अमेरिकन जैज़ पियानिस्ट एंड कंपोजर। ही हैड अ यूनिक इम्प्रोवाइजेशनल स्टाइल एंड मेड न्यूमरस कंट्रीब्यूशन टू द स्टैंडर्ड जैज repertoire, including Round Midnight, Blue Monk, Straight, No Chaser, Ruby My Dear, In Walks Bud, and, well, you didn't. Monk is the second most recorded jazz composer after Duke Ellington. Monk's distinct look included suits, hats, and sunglasses. He also had an idiosyncratic habit during performances. While other musicians continued playing, Monk would stop, stand up, and dance for a few moments before returning to the piano. Monk is one of the 5 jazz musicians to have featured on the cover of Time, other than Louis Armstrong, Dave Brubeck, Duke Ellington, and Wynton Marsalis. In 1993, he was awarded the Grammy Lifetime Achievement Award. In 2006, he was awarded the Special Pulitzer Prize for a body of distinguished and innovative musical composition that has had a significant and enduring impact on the evolution of jazz. I'm playing Blue Monk by Thelonious Monk.
और जयंती की बात करें तो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध क्रांतिकारी बुद्ध भगत की आज जयंती है और इनकी लड़ाई अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों द्वारा किए गए अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध थी। बुद्ध भगत का जन्म आज के झारखंड राज्य में रांची जिले के सिलागाई नामक ग्राम में 17 फरवरी सन 1792 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि उन्हें दैवीय शक्तियां प्राप्त थी, जिनके प्रतीक स्वरूप वे एक कुल्हाड़ी सदा अपने साथ रखते थे। आमतौर पर 1857 को ही स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम समर माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व ही वीर बुद्ध भगत ने न सिर्फ क्रांति का शंखनाद किया बल्कि अपने साहस और नेतृत्व क्षमता से 1832 में तड़ाका विद्रोह नामक ऐतिहासिक आंदोलन का सूत्र धार किया।
Today is also the birthday of Michael Jeffrey Jordan, initials being MJ, the American businessman and former professional basketball player. He played 15 seasons in the National Basketball Association, that is NBA, between 1984 and 2003, winning 6 NBA championships with the Chicago Bulls. He was integral in popularizing basketball and the NBA around the world in 1980s and 90s, becoming the global cultural icon. His profile on NBA website states, by acclamation, Michael Jordan is the greatest basketball player of all time.
और आज हम याद कर रहे हैं जाने माने निर्माता निर्देशक रवि टंडन को, जिनका जन्म आज ही के दिन 1935 में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ था।
हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा।
फिल्म लव इन शिमला और ये रास्ते हैं प्यार के में फिल्म निर्देशन की बारीकियां सीखने के बाद रवि टंडन ने अपनी पहली फिल्म बतौर निर्देशक अनहोनी बनाई और इस फिल्म में संजीव कुमार के अभिनय की तारीफ अब तक होती है। इसके बाद उन्होंने ऋषि कपूर को लेकर फिल्म खेल खेल में बनाई। इसी के रीमेक के तौर पर खिलाड़ी हमने देखी थी और इनकी जो फिल्में हैं, हिट फिल्में, उसमें नजराना, मुकद्दर, मजबूर, खेल खेल में अनहोनी, खुददार, जिंदगी आदि शामिल है।
कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी
और अनीता घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अपने श्रोताओं से अनुमति लें, तो अलका सिंह और अनीता आनंद को अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी।
स्टे गोल्ड फॉर कमिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।